नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना समेत 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अगले वर्ष से समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा नामांकन। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को दिए निर्देश। जेई मेन के जनवरी सत्र की परीक्षा में हाजीपुर के पारणी 99.99 परसेंटाइल के साथ बिहार में पहले स्थान पर रहे। और माघी पूर्णिमा पर प्रदेश भर में गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में पवित्र स्नान जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्य में बाढ़ से सुरक्षा की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण का फेज 3 तथा चंपारण तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क निर्माण की योजना शामिल है। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल और बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सरण विभाग के अभियंता प्रमुख मनोज रमन भी मौजूद थे। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर बिहार में बाढ़ से दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कमला बलान परियोजना से मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और समस्तीपुर जिले के लगभग 144 गांवों की 8.5 लाख से अधिक की आबादी को बाढ़ के दुष्प्रभावों से सुरक्षा मिलेगी। वहीं क्षेत्रवासियों को आवागमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग और सिंचाई सुविधा भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
सर्दियों में पराली जलाने की घटना को कम करने के लिए एक संसदीय समिति ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की तरह धान के अवशेषों के लिए भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है। कल राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ विधान समिति ने सुझाव दिया कि इसके लिए पराली की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल के मौसम से पहले वार्षिक आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से भारत नेपाल के बीच सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल में उन्होंने कहा कि 374 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण वर्ष 2016 तक पूरा होना था, जो अब तक मात्र 177 किलोमीटर ही बन पाया है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दोनों देशों के लिए सामरिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सड़क बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के सिकटी और किशनगंज के गलगलिया तक जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को अगले वर्ष से समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों का नामांकन करने और इसी के अनुरूप कार्य करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मंत्री ने विलंबित शैक्षणिक सत्र को नियमित करने और छात्रों के प्रमाण पत्रों को डीजी लॉकर पर अपलोड कराने को कहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में कौशल विकास केंद्र और उद्यमिता सेल का निर्माण कराने का निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन जनवरी सत्र का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में हाजीपुर के छात्र पारणी 99.99 परसेंटाइल प्राप्त कर बिहार टॉपर बने हैं। परीक्षा में राज्य के 63,481 छात्र शामिल हुए थे। देश भर में 14 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त किया है। राज्य के 19 प्रखंडों में पिछले लगभग एक वर्ष से बंद कौशल विकास केंद्रों को फिर से चालू किया जाएगा। केंद्र संचालन के लिए भवन सहित आधारभूत संरचना राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार पटना, भागलपुर और पश्चिम चंपारण के 2-2 प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। केंद्र संचालन के लिए विभाग ने संबंधित एजेंसियों से आवेदन मांगा है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम का ही प्रयोग कर सकेगा। इससे अधिक सिम होने पर दूर संचार विभाग की ओर से उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। बिहार झारखंड के दूर संचार महानिदेशक बाबूराम ने कहा है कि इस प्रकार के 27 लाख से अधिक मोबाइल सिम नंबरों को बंद किया जा रहा है। महानिदेशक ने बताया कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के दिशा निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान चल रहा है। कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन के प्रतीक इस स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। महाकुंभ में कल्पवास विशेष फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था के साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ है। अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदर्श।
लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। यहाँ इस समय भक्तों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा आज कल्पवासियों की परिक्रमा की भी अंत होगी। 10 लाख से अधिक कल्पवासी यहाँ रुके हुए हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद आज ऐसे पावन अवसर पे सभी घाटों पर कल्पवासी, साधु संत, श्रद्धालु और अपने स्नान के बाद अन्न, धन, तिल, गुड़ और आदि जैसे खाद्य पदार्थ लोगों के बीच दान करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कड़ी है। सुरक्षा के मद्देनजर संगम के सभी तटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों सहित सभी मुस्तैदी से स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराने के लिए अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बड़े हनुमान मंदिर है और डिजिटल महाकुंभ और अक्षत तट है वहाँ पे लोगों की आवाजाही आज बंद है, क्योंकि सुचारू संचालन के लिए आज भीड़ को देखते हुए ये स्थान बंद किए गए।
माघी पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में सुबह से ही पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में पुण्य स्नान को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसके तहत राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने बताया कि आज सुबह 4 बजे से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से गायघाट पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहन JP गंगा पथ से गुजर सकेंगे। आपातकालीन सेवा पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। शहर में बड़े व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। आज संत रविदास की जयंती है। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन बनारस में हुआ था। वे 14वीं सदी के महान संत और कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने जाति का भेदभाव मिटाकर लोगों को एकजुट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनकी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से पटना स्थित बापू सभागार में इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने बताया कि इस समारोह में प्रदेश के विकास मित्र सहित बड़ी संख्या में संत के अनुयायी सम्मिलित होंगे। कैमूर सहित राज्य के 33 जिले के भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा तय मानक से अधिक पाई गई है। केंद्रीय भूजल आयोग की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश के सर्वाधिक आयरन प्रभावित 6 राज्यों में बिहार शामिल है। इन जिलों के भूजल में 1 mg प्रति लीटर से ज्यादा आयरन की मात्रा मिली है। वहीं वर्तमान में राज्य के 12 जिलों में आयरन प्रभावित पेयजल का उपचार PHED विभाग कर रहा है। इधर रिपोर्ट के अनुसार सीवान, वैशाली, बक्सर, जहानाबाद और लखीसराय जिले में पानी में अधिक खारापन पाया गया है। वहीं सीवान जिले के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा भी 30 PBB से अधिक पाई गई है। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 तलवारबाजी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में बिहार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में काजल कुमार, प्रगति कुमार, श्रेयसी सिन्हा और इशिका शेखर ने शानदार प्रदर्शन किया। एसटीएफ की विशेष टीम ने सुपौल जिले के 50,000 रूपये के इनामी अपराधी उपदेश कुमार और उसके साथी मोहम्मद रईस को प्रतापगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं बेगूसराय जिले से एसटीएफ ने विभिन्न मामलों में 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय के नामांकन पंजी में बच्चों के नाम और जन्म तिथि समेत अन्य संशोधनों को करने की अनुमति दी है। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने बताया कि बच्चों की पूरी जानकारी उनके आधार कार्ड के अनुरूप हो, इसलिए ये निर्देश दिया गया है। बेगूसराय में साइबर अपराधियों ने बिजली मीटर रिचार्ज करने के नाम पर जालसाजी कर एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से लगभग 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली। इस संबंध में स्थानीय साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिए गए बयान पर लिखा है, AIA के वैश्विक तंत्र से विश्वास बढ़ेगा। दैनिक जागरण ने राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, अगले माह से प्रायोरिटी कॉरिडोर में बिछेगा मेट्रो का ट्रैक, बोगियां भी जल्द आएंगी, पटना मार्च तक तैयार हो जाएगा डिपो। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, सरकार ने आवास बोर्ड की जमीन के मालिकों को दी बड़ी राहत, आवास बोर्ड की जमीन के आवंटी अब लगान देकर म्यूटेशन करा सकेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक, नदी जोड़ परियोजना समेत 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अगले वर्ष से समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा नामांकन, शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को दिए निर्देश। जेई मेन की जनवरी सत्र की परीक्षा में हाजीपुर के पारणी 99.9 और 9 परसेंटाइल के साथ बिहार में पहले स्थान पर रहे। और माघी पूर्णिमा पर प्रदेश भर में गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में पवित्र स्नान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।